मैं उसका जवाब नहीं देना चाहती क्योंकि ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ये गवर्नमेंट जो है बड़ी डेस्परेट है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ये इन बेसलेस एड्स के ऊपर चला रही है और फॉल्स एलिगेशंस मेरे ऊपर लगा रही है, तो इनको जो है फोकस करना चाहिए जो ऑन्टेरियो के अंदर प्रायोरिटीज हैं उनके ऊपर। पीसी के जो एड्स आए थे December 2 में, जब ये बॉनी क्रॉम्बी जो थी अपने इलेक्शन जो था वो उसके बाद रिजल्ट्स का वेट कर रही थी कि ऑन्टेरियो लिबरल पार्टी के जो हुए थे ऑन्टेरियो के लिए, उसमें तो उसमें ये एड्स चलाए गए थे जिसमें कि खास तौर पे कहा गया था कि ये बड़ी प्रिविलेज क्लास को बिलोंग करती हैं, बड़ी फैंसी कार चलाती हैं, बड़े फैंसी घरों में रहती हैं हैम्पटन्स के अंदर। तो उसके बारे में जो है बॉनी क्रॉम्बी साहब ने कहा कि इन्होंने तो मुझे फोर्ड साहब ने कॉन्ग्रेचुलेट तक नहीं किया, जो कि बड़ा कस्टमरी होता है कि हम एक दूसरे को कहते जब हम इलेक्शंस विन करते हैं। और ये जो घर जिसकी के बात कर रहे हैं हैम्पटन्स में, ये मेरे एक बहुत ही क्लोज रिश्तेदारों का था जिन्होंने के मरने से पहले ये मुझे दिया था, और ये न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के ऊपर है, ये हैम्पटन्स के अंदर नहीं है। तो ये एक स्कैंडल प्लेग्ड गवर्नमेंट है और बस ये डेस्परेट है ये बातें ऐसे करने के लिए, वरना इनके पास सच्चाई जो है वो कुछ नहीं है। तो काफी ठन गई है दोनों के बीच में। आज प्राग की जो चार्ल्स यूनिवर्सिटी है जी, वहां पे एक उसी यूनिवर्सिटी का एक जो स्टूडेंट था उसने गोलियां चलाई जिसकी वजह से 15 लोगों की डेथ हुई है और 24 लोग जो हैं बहुत गंभीर अंदाज में जख्मी हो गए हैं। ये प्राग के जो यूनिवर्सिटी का जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का डिपार्टमेंट है ये वहां पे हुआ है। चेक पुलिस जो है उसने वो सारा स्क्वायर जहां पे कि ये हुआ है वो और वो जो एरिया है उसके आसपास, क्योंकि ये बड़ा पॉपुलर टाउन है उसके अंदर ये सारा वाकया हुआ है, तो वहां पे उस सारे को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। और ये जो है इलाका ये बिल्कुल एक टूरिस्ट बड़ी डेस्टिनेशन जो है ओल्ड टाउन स्क्वायर उसके पास है। पुलिस ने कहा जी कि हम समझते थे कि ये शूटर जो है शायद ये जो दुनिया में मैसेकर हो रहे हैं उनसे इंस्पायर्ड है, लेकिन इस वक्त हम इस शूटिंग को इंटरनेशनल टेररिज्म के साथ लिंक नहीं कर रहे हैं। ये लड़का जो था ये स्टूडेंट था इस यूनिवर्सिटी का, लेकिन इसको जो है अब एलिमिनेट कर दिया गया है। ये आज जो है प्राग की पुलिस ने सारा कुछ बताया, तो काफी यानी के जो है मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से ये चीजें जो है आ रही हैं। द गार्डियन की आज एक खबर है जी, और इसके मुताबिक जो आयरलैंड है वो सू कर सकता है यूके को जो इनका जो नॉर्दर्न आयरलैंड के जो ट्रबल्स हुए थे उसके ऊपर। इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं लियो वराडकर, उन्होंने कहा है कि डबलिन एक लॉन्च कर सकता है इंटरस्टेट केस यूके के खिलाफ जो इनकी लेगेसी थी अंडर यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, क्योंकि जो कुछ इन्होंने किया था ये बिल्कुल ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट था। और हम जो हैं, वैसे तो मुझे बड़ा अफसोस है कि ये मैं मुद्दा सामने लेकर आ रहा हूं, लेकिन मैं आंसरेबल हूं फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स को नॉर्दर्न आयरलैंड में, और जो मैंने उनको कमिटमेंट की थी सर्वाइवर्स को कि मैं जो है ये मुद्दा सामने लेकर आऊंगा। हम इसके ऊपर कोई भी ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं करेंगे बल्कि जुडिशियल रिव्यू कराएंगे ऑन द बेसिस ऑफ लीगल एडवाइस। तो जाहिर है कि यूके की गवर्नमेंट जो है उसके लिए ये बड़ा ही अफसोस का और डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि जाहिर है कि वो दोस्ती बना के रखना चाहते हैं आयरलैंड के साथ, और आयरलैंड भी कोशिश कर रहा है दोस्ती बनाने के लिए, क्योंकि इनके जो टाइज हैं दोनों के काफी खराब हो गए हैं ब्रेक्सिट के बाद, क्योंकि आयरलैंड का ख्याल था कि ब्रेक्सिट ने इनके इंटरेस्ट को काफी नुकसान पहुंचाया। बहरहाल इंग्लैंड ने कहा कि नहीं, उसको ब्रेक्सिट में जाना ही है क्योंकि ताकि वो अपना ड्यू शेयर जो है वो ले सके और अपनी दुनिया में जो है वो इंपॉर्टेंट पोजिशन बना सके। तो बहरहाल जी ये आप कहते हैं जी कि हम यूरोपियन कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन स्ट्रैसबर्ग, तो वहां पे ये सारा हम मुद्दा करेंगे कि ये जो यहां पे दंगे हुए थे राइट्स हुए थे उनको कहते हैं ट्रबल्स का नाम दिया जाता है, तो कहते हैं उसके ऊपर हमको एक लीगल रिव्यू देखना पड़ेगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है जी उसने आज म्यांमार की जनता जो है मिलिट्री जनता उसके बारे में कहा है कि ये इनको वॉर क्राइम्स के लिए इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है इन्होंने जो है यहां पे एथनिक जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ ब्रूटैलिटी दिखाई है। आपको पता ही है कि ये कू लेकर आई थी म्यांमार की गवर्नमेंट, और इसके अंदर जो सिटिंग गवर्नमेंट थी म्यांमार की मिलिट्री जो सिटिंग गवर्नमेंट थी यहां पे सू की उसको इन्होंने हटाया था, और उसके बाद जो है उस वक्त से इन्होंने ये कू करके इस पे तजर्बा किया हुआ है। यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक जो अंदाजा लगाया है उसमें उन्होंने कहा है जी कि 2 मिलियन के करीब जो है म्यांमार के लोगों को फोर्स किया जा चुका है कि वो अपने घरों से जाएं जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है February 2021 से, कि पावर जो है उसको ग्रैब किया जाए। और ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि म्यांमार की मिलिट्री ने बहुत ही ब्लडी इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स किए हैं सिविलियंस के ऊपर, तो और ये एक स्पेशल जो है ये पैटर्न इनका दिखाता है कि ताकि डिसेंटिंग वॉइसेस को, डेमोक्रेटिक व्यूज को जो है बंद किया जा सके. तो उसके लिए उन्होंने कहा जी कि इनको ट्राई करें वॉर क्राइम्स के लिए. लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल जी और बाकी सारे बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स के जो दावेदार हैं, आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि जो इनकी सूकी की भी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी कोई बड़े कोई ह्यूमन राइट्स के परचम नहीं थे उठाए हुए. जो कुछ उन्होंने रोहिंग्या के साथ किया उसके ऊपर भी आप थोड़ा गौर करो. अच्छा जनाब, आज जो है दो बयान आए हैं, एक हमास की तरफ से और एक इसराइल की तरफ से. हमास ने कहा है कि हम किसी सूरत भी हॉस्टेजेस को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि टॉक्स के अंदर बैठे हुए हैं यूएस और कतर, और वो कॉन्स्टेंटली कह रहा है कि ये हमको जो है निगोसिएशन की तरफ जाना चाहे पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डेवस्टेशन जो है गाजा के अंदर आई है. हमास ने कहा है कि हम और उनके ऊपर हमास को जोर दिया जा रहा है कि वो रिफ्यूजीज हॉस्टेजेस को छोड़े. वो कह रहे हैं हम किसी सूरत हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि ये फाइटिंग जो इसराइल ने शुरू की है इसको कंप्लीटली जो है वो स्टॉप करेगा, और हम बिल्कुल टेम्पररी ट्रूस जो है लास्ट टाइम की तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे. उसी का जवाब देते हुए हिब्रू मीडिया जो है उसने कहा है कि इसराइल को यह बिल्कुल नामंजूर है. आपको पता ही है कि हमास के लीडर इस्माइल हानिया जो है इस वक्त इजिप्ट के अंदर है, और अब पता चल रहा है कि इस्लामिक जिहाद के हेड जो है वो भी इजिप्ट में पहुंच रहे हैं ये बातचीत इनके लिए करने के लिए, क्योंकि बेतहाशा तबाही वहां पे गाजा में आ चुकी है. और अगर आप गाजा की तस्वीरें देखें तो लगता है कि जैसे वहां पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए हैं. बिल्कुल इमारतें जो है वो एक मलिया मेट हुई हुई एक डेवस्टेशन का, या शायद जो आपने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा वैसा वो मंजर पेश कर रही हैं. तो इसराइल ने कहा है कि हम टेम्पररी पॉज कर सकते हैं अगर ये हॉस्टेजेस को फ्री किया जाए. हमास ने इसको बिल्कुल निखार दिया, वो कहते हैं नहीं, परमानेंट एंड टू फाइटिंग होएगा तो ही हम आगे चलेंगे. व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन जॉन किर्बी ने आज रिपोर्टर्स को एयरफोर्स वन के ऊपर कहा कि बहुत सीरियस डिस्कशंस जो हैं वो चल रही हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि इजिप्ट और कतर और यूएसए जो हैं, इजिप्ट तो अब लेट आया, वैसे यूएस और कतर जो हैं इन निगोसिएशन को बढ़ा रहे हैं. बाइडन साहब ने भी कहा है कि हम बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं कि ये फौरन इसको रोका जाए. ताहिर अल नानो जो कि हानिया के मीडिया एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा जी कि इसराइल जब तक अपनी अग्रेशन कंटिन्यू रखेगा हम उसके साथ बात करने को तैयार नहीं है. इसराइल के फॉरन मिनिस्टर एली कोहन ने कहा है कि हाँ बातचीत तो हो रही है हॉस्टेज रिलीज पे, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हम इसको रोक देंगे को हम उस वक्त तक नहीं रोकेंगे जिस वक्त तक हमास गाजा का कंट्रोल नहीं छोड़ेगा. तो इसलिए आप ख्याल रखें कि ये जो हमारे अटैक्स हैं ये आने वाले वीक्स में भी कंटिन्यू रहेंगे. इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नतन्याहू ने भी ये कहा है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम लड़ाई बंद कर देंगे तो ये रियलिटी नहीं रहेगी. हमास के जो टेररिस्ट हैं एक से लेकर आखिरी आदमी तक जब तक मर नहीं जाएगा हम ये लड़ाई जारी रखेंगे. दे आर ऑल डेड मैन वॉकिंग. और लेकिन यूएस इनको अब कॉन्स्टेंटली कह रहा है कि अपना ग्राउंड ऑफेंसिव स्केल डाउन करें, अलबत्त सीज फायर का यूएस जो है नहीं कह रहा है. तो ये आज जो है काफी फिर से चीजें जो हैं गर्मा गर्म हैं. वॉशिंगटन पोस्ट की जनाब आज एक रिपोर्ट है, और वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट जो है बड़ी जबरदस्त किस्म की है, क्योंकि जो भी इसराइल के झूठे किस्म के जो इल्जामात थे आज वो सारे के सारे सामने आ चुके हैं. वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने कहा था जी कि अल शिफा हॉस्पिटल में जब उसने अटैक किया था तो उसने कहा था कि वो अल शिफा हॉस्पिटल उसके आसपास की जो पांच इमारतें हैं उसके अंदर हमास अपनी एक्टिविटीज कर रहा है और उसके अंदर टनल्स हैं और वो टनल्स जो हैं हॉस्पिटल वार्ड्स जो हैं उनके साथ जो है वो एडजेसेंट हैं, और तभी उन्होंने उनके ऊपर बॉम्बिंग की थी और पूरा बर्बाद कर दिया था हॉस्पिटल. उसके अंदर बेशुमार बच्चे और जो पेशेंट्स और कुछ लोगों ने जो वहां पे रिफ्यूज भी ली हुई थी वो सब के सब वहां पे जो थे वो मर गए थे जब इन्होंने रॉकेट अटैक्स किए थे. वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा जी कि हमने इसके ऊपर एक एनालिसिस किया है और हमने हर चीज को देखा है. इजरायली डिफेंस फोर्सेज स्पोक्स पर्सन डैनियल हगैरी जो थे उन्होंने कहा जी कि हमने जो कुछ भी आपको तस्वीरें और एविडेंसेस दी हैं ये बिल्कुल सही दी हैं. और नवंबर 15 को आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक सीरीज ऑफ पिक्चर्स और वीडियोस भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने के लिए की थी, और उन्होंने कहा था जी कि ये टेररिस्ट थे जो कि यहां पे ये कमांड ऑपरेशंस जो हैं इधर से चला रहे थे, और शिफा हॉस्पिटल के अंडर जो है वो बड़े उन्होंने खाली रूम्स और सारा कुछ दिखाया. और यूएस का जो इंटेलिजेंस था उसमें भी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि जी बिल्कुल हम एंडोर्स करते हैं ये जो कुछ भी इसराइल कह रहा है. वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि ये सारे का सारा झूठ है जो इसराइल ने कहा है. वो वॉशिंगटन पोस्ट कहता है जी हमने एक एक तस्वीर, एक एक सैटेलाइट इमेजरी, एक एक जो एविडेंसेस इन्होंने इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दी थी, हमने इनको एनालाइज किया है, और ये जो उन्होंने कहा जी कि रूम कनेक्ट कर रहा है टनल नेटवर्क्स के साथ, और जी ये इसके अंदर जो था वार्ड्स के अंदर, हॉस्पिटल के वार्ड्स के अंदर जो था सारी ये हमास वाले कार्रवाइयां कर रहे थे, ये सब का सब झूठ है, हमें इस तरह की कोई भी एविडेंस जो है वो नहीं मिली है इसके अंदर। और उसी का आज अफसोस किया वाशिंगटन पोस्ट ने कि इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट जो है वो अटैक्स और फायरिंग्स यहां पे और जो है मिसल के अटैक्स खासतौर पर अलशिफा हॉस्पिटल में ना सिर्फ किए बल्कि और भी जो ये बेशुमार हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं उसमें ना सिर्फ पेशेंट्स बल्कि प्री मेच्योर बेबीज और बहुत से लोग जिन्होंने पनाह ली हुई है वो सब के सब यहां पे मरते जा रहे हैं। और ये हमने जो एक हॉस्पिटल का एनालाइज किया वो झूठ है सारा। वो कहते हैं जी कि हमने जब पूछा बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में तो कुछ ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने बिना अपना नाम लिए, सीनियर यूएस जो कांग्रेस के मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि जी इनको ज्यादा प्रूफ्स देने चाहिए थे इसराइल को, पूरे तरह से उन्होंने प्रूफ्स नहीं दिए हैं, तो ये जो है ये बिल्कुल गलत है और जो कुछ उन्होंने अटैक्स किए हैं दे आर अनप्रेसिडेंटेड इन रीसेंट डेकेड्स उन्होंने कहा। तो ये जनाब अब वड्डा न्यूज पेपर है, इसने सारा जी दूध का दूध और पानी का पानी करके सामने रख दिया आपके, तो अब आप जो है खुद अंदाजा लगाएं कि कितना जुल्म हो रहा है उन पैलेस्टीनियंस के ऊपर, और कॉन्स्टेंटली इसराइल झूठ बोल रहा है और जो अंकल सैम है वो उनके पीछे खड़े हुए हैं। अच्छा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय नानन कबोब, और नानन कबोब की नई जो है वो लोकेशन आ गई है 5042 सैटेलाइट ड्राइव यूनिट फिल्मी 3 के ऊपर, इनका नंबर है 4162858191। अगर आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं तो नानन कबोब पे जाएं। इसके अलावा ऑन्टेरियो का लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल बफे जो है वो विलेज टेस्ट है, और पहले ये थे मिसेस सागा में और अब ये आगे हैं ओकविल में 2294 लेक शोर रोड वेस्ट। तो अगर आपको इनके साथ ऑर्डर डालना है तो आप फैसल चड्ढा साहब को कॉल करें एट 905-226-2294। और जनाब इसके अलावा हमारे आपके हम सब के राजा जी राजा बाजा, आपको पता ही है वो कहते हैं मैं आपको राइट कवरेज लेके देता हूं और आपके बेशुमार पैसे बचाता हूं, ऑल स्टेट एजेक्स एजेंसी के साथ रिलेटेड हैं, और आप इनको कॉल कर सकते हैं फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन एट 6472903773 पर।
ग्रिल एंड चिक उनका कहना है कि बेस्ट ग्रिल चिकन इन टाउन, जाके ट्राई करें साहब आप मिसागा में 3525 प्लैटिनम ड्राइव मिसिसागा एंड 15 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन। www.grillandchick.com पर जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 9054560500 इनका फोन नंबर है। आप या आपके घर में किसी को भी सुनने में कमी हो रही हो या हो गई हो तो साहब आप हेयर मैक्स के शिराज साहब से मुलाकात करनी जो बहुत जरूरी बनती है। 4167928792 शिराज भाई कहते हैं कि अगर आप साजो आवाज का हवाला देंगे तो आपका हेयरिंग टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री कर दिया जाएगा। अगेन 4167928792। ईस्टर्न में अगर आप हैं और आपको डेंटिस्ट की जरूरत है तो आप डॉक्टर पद्माजा रानी के पास पहुंच जाइए, 3410 शेपर्ड एवेन्यू राइट एट द कॉर्नर ऑफ वार्डन शेपर्ड। डॉक्टर पद्माजा रानी हमारी और आपकी डेंटिस्ट, 4162907466 इनका फोन नंबर है जी।
हाँ जी, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उन्होंने कैपिटल पुलिस को कहा है कि ये जो बलोच डेमोन्स्ट्रेटर्स जो हैं जो कि इस्लामाबाद में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और आप इनको ये प्रोटेस्ट करने दें, और उन्होंने कहा है कि खबरदार इन प्रोटेस्ट को और इन मार्चेस को आपने रोका। ये एक हियरिंग सुन रहे थे जो प्ली जिसमें के डाली गई थी और कहा गया था कि ये जो बलोच प्रोटेस्टर्स हैं इनको इस्लामाबाद में इनको डिटेन किया जा रहा है, पकड़ा धकड़ा जा रहा है, और हम यहां पे इसलिए आए हैं कि हम इस्लामाबाद में अथॉरिटी से पूछ सकें ये जो एनफोर्स डिसअपियरेंसेस ऑफ बलोच मिसिंग पर्सन्स होती हैं उसके बारे में गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है। इन्होंने अपना मार्च तुर्बत से शुरू किया था और दे वर हेडिंग टूवर्ड्स इस्लामाबाद प्रेस क्लब। बलोच यकजहती काउंसिल जो थी उसने ये सारा जो मोर्चा था वो निकाला था और इस्लामाबाद से मोटरवे के थ्रू जो है ये चुंगी नंबर 26 की तरफ आ रहे थे जब पुलिस ने सारी बैरिकेड्स लगाए और जितनी भी मेन आर्टरीज थी जैसे कि कश्मीर एवेन्यू वगैरह उन सबको बंद कर दिया था क्योंकि ये जाना चाहते थे शायद रेड जोन की तरफ और इनको पुलिस ने मना किया। ह्यूमन राइट्स लॉयर जो ईमान मजारी हैं वो इनको रिप्रेजेंट कर रही थी और वो उन्होंने इनकी प्ली डाली थी यहां पे ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजर समी बलोच एंड अब्दुल सलाम, और उन्होंने कहा जी कि ये जो इनको जो प्रोटेस्टर्स को जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है जो इन्होंने करना शुरू किया और बड़ा पीसफुल था उसके लिए जो इनको डिटेन किया, तो इस्लामाबाद पुलिस को आप ऑर्डर्स दें। बहरहाल जी इनको ऑर्डर्स दिए गए और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला गया, उसके बाद जी पुलिस जो इस्लामाबाद की है उसको ऑर्डर्स दिए गए कि ये जितने लोग आपने डिटेन किए हैं उन सबको छोड़ दें, तो उसके बाद फिर इन सबको छोड़ा गया। पीटीआई के प्रेसिडेंट जो हैं चौधरी परवेज इलाही, उन्होंने कहा जी कि ये जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं फरवरी 8 को, इसके अंदर वो कंटेस्ट करेंगे 3 प्रोविंशियल और 3 नेशनल सीटों के ऊपर। आज प्रेस के साथ बात कर रहे थे इस्लामाबाद में और उन्होंने कहा जी कि अगर यहां पे पाकिस्तान के अंदर फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस ना हुए तो पाकिस्तान जो है बहुत गहरी खाई में चला जाएगा और जो हमारी मुश्किलात हैं और खासतौर पर पुअर मैसेज की मुश्किलात को खत्म करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम, और फ्यूचर के लिए भी जरूरी है कि हम एक साफ और शफाफ जो है इलेक्शंस यहां पे करवाएं। और उनसे जब पूछा गया कि आपने क्या एग्री किया था बैरिस्टर गौहर को पीटीआई का चेयर बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैंने इस चीज को एग्री किया था। ऑन द मैटर ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड, उन्होंने कहा जी कि फील्ड ही मौजूद नहीं है तो लेवल प्लेइंग कैसे होएगा। और उन्होंने कहा जी कि ये जो लोग हैं आज मुल्क के अंदर भूखे मर रहे हैं, जो भी कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं उनकी वजह से और खासतौर पर पीएमएलएन के जो लीडर्स हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, तो इसलिए अब उनको वोट देने की जरूरत नहीं है, नई लीडरशिप को आगे आने दें। है जी पायन, ये गाल है सही है। अच्छा जनाब, 2018 का जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें भी एक ट्रांसजेंडर जो लेडी थी उसने, यानी पर्सन आप कह सकते हैं, उसने पार्टिसिपेट किया था। और अब एक ये सेकंड जो है ट्रांसजेंडर पर्सन केपी से, कैबर पख्तूनख्वा से, वो अब फरवरी 8 के जो इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं उसमें हिस्सा लेने वाली हैं। ये बड़ी ही पॉपुलर हैं और ये जो थी केपी की पहली ट्रांसजेंडर आरजे थी, रेडियो जॉकी थी, तो इनका नाम है सोबिया खान और ये पिशावर से हैं। इन्होंने अपनी जो नॉमिनेशन पेपर्स जो है आज कॉन्स्टिट्यूएंसी PK81 से डाले हैं और वो कहते हैं जी कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे रन कर रही हूं और अगर मैं विन की तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, वुमेन और चिल्ड्रन जो है उनके केस को मैं आगे लेके जाऊंगी, खासतौर पर जो ये रॉन्ग किस्म के परसेप्शन हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए उसको हटाने की मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी जो है उनका योगदान है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो वो कहती हैं जी कि मैं डोर टू डोर जाऊंगी और मैं लोगों को कहूंगी ये मुझे सपोर्ट दें ताकि मैं जीत के आपके मसलों के ऊपर बात कर सकूं। तो जनाब तब्दीली आ गई है?
आ गई,
हाँ जी आ गई है तब्दीली। हाँ जी, अच्छा जनाब, कल हमने आपको पूरी डिटेल्ड वही जो इंटरव्यू दिया था टूडो साहब ने, जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि बड़ा टोनल चेंज आया है इंडिया के स्टैंस में जब से कि अमरीका ने उनको बताया कि आपकी जो गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स हैं इन्वॉल्व हैं फॉरेन सॉइल के ऊपर लोगों को मारने के लिए, उसके ऊपर आज इंडिया ने बहुत ज्यादा रिएक्शन शो किया है। इसके ऊपर बात करते हुए मियां के जो यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, उन्होंने कहा जी हमारा स्टांस जो जहां तक है वो बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर है, हमारा कोर इशू ये है कि हमने कनाडा से कई बार पूछा है कि आप ये टेररिस्ट और एंटी इंडिया एलिमेंट्स और सेपरेटिस्ट जो हैं उनको आपने इतनी खुली स्पेस क्यों दी हुई है कि वो मिसयूज कर रहे हैं आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है आपके कंट्री में। ये सब लोग जो हैं वांटेड हैं यहां पे, चाहे गुरप्रताप सिंह पन्नू है चाहे कि कोई दूसरा है निजर है, ये सब वांटेड लोग हैं, तो इनको आपने इतनी खुली छुट्टी क्यों दी हुई है। और उन्होंने कहा जी कि अगर ये लग रहा है टूडो साहब को कि बड़ा टोनल चेंज है, कोई टोनल चेंज और कोई शिफ्ट नहीं है हमारे जो उसके स्टैंस के अंदर, हमारी जो पोजीशन है अभी भी कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंस है में है, उस कंसिस्टेंसी है उसके अंदर, और हम कॉन्स्टेंटली कनाडा को कह रहे हैं कि इन एंटी इंडिया जो एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ आप एक्शन लें। इससे पहले जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने भी कहा था कि हम कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कनाडा को कि इनके खिलाफ क्रैकडाउन करें, लेकिन जो हमें यूएस ने एविडेंस दी है उसके ऊपर तो हम काम करेंगे, लेकिन जो एलिगेशंस कनाडा ने हमारे ऊपर लगाए हैं वो बिल्कुल गलत हैं, वो सिर्फ एलिगेशंस हैं और इसलिए उसको कनाडा को इक्विटेबल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। Okay. हैं जी पायन सही है,
सही
खली वली उन्होंने कह दिया, उन्होंने कनाडा को कहा खली वली
लाफिर जी,
हां थोड़ी गल नहीं असी मनते, असी सिर्फ अंकल सैम की गल मनने, तुम कौन हो, हैं तुम कौन, मैं खामखा, हैं जी जो रस्ता पढ़ो। तो जनाब बड़ी बातें सुनाई हैं आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कनाडा को। अच्छा जनाब, हिंदुस्तान के अंदर जो इंडिया अलायंस है उसके मेंबर्स ने आज निकाला मोर्चा, और ये इन्होंने शुरू किया मार्च पार्लियामेंट से लेके विजय चौक तक, ये दिल्ली के अंदर गए, और इसलिए क्योंकि आपको हमने बताया ही था, बड़े दिनों से हम बता रहे हैं, 146 जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनको सस्पेंड किया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने यूनियन मिनिस्टर अमित शाह साहब से पूछा था कि ये जो ब्रीच हुई थी सिक्योरिटी की पार्लियामेंट में, कि जिसमें 6 बच्चे जंप करके आगे थे और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करना चाहते थे और फिर उन्होंने येलो धुआं छोड़ा था, तो ये सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ, तो इसके ऊपर आज बात करते हुए सबसे पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट मलिक अर्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी की गवर्नमेंट जो है वो चाहती ही नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वो फंक्शन करे या डेमोक्रेसी जो है यहां पे चले या डेमोक्रेटिक तरीके से यहां पे बातचीत की जा सके। हम जो हैं इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोगों के और हमारा फर्ज है कि लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो पार्लियामेंट में बयान करें। अगर हम पार्लियामेंट में नहीं बात कर सकते तो फिर हम कहां जाके बात करेंगे। और अब तक जो है ये जो 6 लोग हैं इनके खिलाफ तो अंडर जो यूएपी है जिसको के कहा जाता है हिंदुस्तान में बड़ा ही ड्रेकोनियन लॉ है क्योंकि ये एंटी टेररिज्म के होता है, तो इनके ऊपर अगर एंटी टेररिज्म के केसेस जो हैं वो के टेररिज्म के केसेस जो हैं अंडर यूएपीए लगाए गए हैं, तो फिर ये जो बीजेपी के एमपी हैं प्रताप सिम्बा जिन्होंने के इनको पैसेज दिए थे उसके खिलाफ अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। खड़गे साहब ने कहा जी कि हमने तो रिपीटेडली शाह साहब से और मोदी जी से कहा कि वो हाउस के अंदर आप जो है अपनी वजाहत दें और हमें बताएं, लेकिन उन्होंने कोई भी हमें वजाहत नहीं दी है। टीएमसी के एमपी कल्याण बैनर्जी उन्होंने कहा जी कि ये जो इन्होंने मिमिक्री की थी वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा के चेयरमैन है जगदीप ढांडकर और बड़ा उनका मजाक उड़ाया था, तो उसके ऊपर जब खड़गे साहब से पूछा गया कि आपके जो इंडिया ऑपोजिशन के लोग हैं ये तो अब इतने सीनियर लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्होंने कहा जी उन्होंने कोई मजाक नहीं उड़ाया क्योंकि जो ढांडकर साहब थे उन्होंने कैस्टिज्म जो है वो उसका जो है वो इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट के अंदर अपना जो है विक्टिम कार्ड प्ले किया है, क्योंकि ढांडकर साहब ने कहा था कि ये जो मुझे इंसल्ट किया गया सिर्फ इसलिए किया गया कि मैं जाट हूं, तो उन्होंने कहा जी कि डेमोक्रेसी के अंदर हम किसी को ऊंचा लंबा गोरा नीला पीला किसी का हम कोई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फर्क नहीं करता, तो उन्होंने कैस्टिज्म करने की कोशिश की है। इसके अलावा झारखंड की मुक्ति मोर्चा की जो एमपी है माहुआ माझी उन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का ब्रीच जो था उसका हमने एक क्वेश्चन उठाया था और ऑपोजिशन का फर्ज है कि वो गवर्नमेंट से पूछे, तो शाह साहब से जब हमने पूछा तो उसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने हमें सस्पेंड कर दिया। हमारा काम है सवाल करना और सवाल का जवाब देना गवर्नमेंट का काम है, ये दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। 800 एमपीज जो हैं वो मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और पार्लियामेंट में बैठते हैं, और अगर ये इस तरह की सिक्योरिटी ब्रीच हो और गवर्नमेंट से पूछा जाए तो उसका जवाब देना बनता है। आरजेडी के एमपी मनोज कुमार झा ने कहा जी कि हम मणिपुर में जो आग लगी हुई है और जो वहां पे जो कुछ सिक्योरिटी के मसाइल हैं जो दो ट्राइब्स के बीच में लड़ाई चल रही है उसके ऊपर हम क्या बात कर सकते हैं जबकि हमारी अपनी खुद की पार्लियामेंट बिल्डिंग ही सिक्योर नहीं है। और अब जी ऑपोजिशन ने आज कहा है कि कल यानी कि फ्राइडे के दिन वो जंतर मंतर के ऊपर जो है अपना प्रोटेस्ट होल्ड करेंगे, तो मतलब इंडिया के विच भी भड़की हुई है चीजें, काफी हंगामे हैं पैन, कोई मजाक नहीं है डेमोक्रेसी चलाना, तो अनु की लगता है कि मजाक इंडिया जो वड्डे मुल्क में चलाना है पैन, मतलब व्हाट इज दिस जो है ये। अच्छा जनाब, हिंदुस्तान के अंदर एक और भी बहुत बड़ा कंसर्न आ गया और वो ये है कि कोविड-19 बेतहाशा तेजी से फैल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। इंडियन हेल्थ एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने अब वार्निंग दी है कि JN.1 सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन डिटेक्ट किया गया है बेशुमार जो स्टेट्स हैं इंडिया की, तो पाइयो जो इंडिया जा रहे हो जरा होश से जाओ। नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोविड-19 टास्क फोर्स जो है उसने कहा जी कि 30% ऑफ पेशेंट्स जिनको के लग रहा था कि इन्फ्लुएंजा लाइक या कि फ्लू लाइक कोई इलनेस है जब उनका टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव निकले, और उन्होंने कहा जी कि ये आप इसको हल्का ना लें अगर आपको जुकाम हो जाता है क्योंकि ये जो है जुकाम इनफैक्ट अगर कोविड हो तो फिर इट कैन लीड टू हार्ट अटैक स्ट्रोक्स मेंटल हेल्थ। WHO ने भी ये कहा था कि वैसे तो वैक्सीन जो है आपको प्रोटेक्शन देगी लेकिन हिंदुस्तान में कुछ लोगों को वैक्सीन जिनको है भी लगी हुई उनको भी जो है ये कोविड होता जा रहा है। ये जो केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं ये कोची महाराष्ट्र गोवा तेलंगाना हरियाणा यूपी नोएडा और केरला में फैल रहे हैं, खासतौर पर केरला में 1,324 एक्टिव केसेस जो है देखे गए हैं इस वक्त जो है मुल्क सारे के अंदर से जो बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो पहले जो ये नंबर था 594 था, जो कि अब बढ़ के 1324 है, और भी अभी जो डिटेक्शंस हैं वो जारी रखी हुई हैं। इसीलिए हिंदुस्तान की बहुत सारी स्टेट्स में अब कहा गया है कि मास्क जो है आपको पहनना पड़ेगा, है मजद भाई। अच्छा जनाब, आज जो है शाहरुख खान की फिल्म डंकी जो है वो रिलीज हो गई है, जिसको के बनाया है राजकुमार हिरानी ने, और इसके आज बहुत से अच्छे रिव्यूज आए हैं। हिरानी साहब ने 5 साल के बाद अब ये फिल्म बनाई है। इनकी जो 5 साल पहले फिल्म आई थी वो भी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, संजय खान के ऊपर थी, संजू, और उसके अंदर रणवीर सिंह आपको नजर आए थे। तो वो कहते हैं जी कि डंकी जो है इट इज फुल ऑफ लव, इट हैज हार्ट ब्रेक्स, लाफ्टर, टीयर्स, होप, फेलियर, और म्यूजिक जो है फिल्म का बेतहाशा अच्छा है। इट्स नॉट जस्ट अ लव स्टोरी वेयर अ बॉय मीट्स गर्ल, बल्कि ये जो एक इलीगल इमिग्रेंट माइग्रेशन जो है इंडिया से, जो कि बड़े खतरनाक रूट्स लेके बाहर की दुनिया में जाते हैं अच्छी जिंदगी के लिए, उसके ऊपर है, जिसमें कि बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। अलबत्ता ये फिल्म जो है इसका जो फर्स्ट डे कलेक्शन है वो सोचा जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सिर्फ 30 करोड़ जो होगा, पहले दिन की कमाई 30 करोड़ होगी ओपनिंग डे की, जो कि लोएस्ट है इस साल शाहरुख खान की दूसरी फिल्मों से। पठान जो थी उसने ओपनिंग डे के ऊपर 57 करोड़ रुपीज का बिजनेस किया था, और जवान ने 89.5 करोड़ का बिजनेस किया था,
बस
ओनली। हाँ जी, और जनाब जो लेटेस्ट एक एपिसोड आई है कॉफी विद करण सीजन 8, इसके के अंदर करण जौहर ने अजय देवगन और फिल्म मेकर रोहित शेट्टी को जो है इसमें बुलाया हुआ था, और अजय देवगन जो है वो उनसे ये सवाल जब कर रहे थे करण जौहर, और उन्होंने उनसे पूछा जी कि लोग कहते हैं कि कुछ लोग जो कि फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं बड़े वो प्रिविलेज्ड होते हैं और उनको बड़ा जो है मौके मिलते रहते हैं। उसके अजय देवगन ने कहा कि नहीं, यहां पे हर किसी को बहुत ज्यादा, उसने इंग्लिश में कहते हुए बात करते हुए कहा कि वी हैव टू वर्क वेरी 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 हार्ड टू रीच हियर वेयर वी आर, और बहुत सारे लोगों को मैंने बर्बाद होते हुए देखा है इस जर्नी के अंदर। उसने अपने और रोहित की एक तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमारे बाप जो थे मुंबई के अंदर आए थे और उन्होंने सोचा था कि अगर कोई प्रोजेक्ट चला तो चला, और जब वो नहीं चलता था तो 6-6 महीने तक वो प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगाते रहते थे कि उनको काम मिला जाए। इसके अंदर जो हमारी पहली जनरेशन थी उसके 30 से 40 साल गुजर गए। अलबत्ता ये स्ट्रगल हमारी भी जो जनरेशन है उसमें कॉन्स्टेंटली जो है वो कंटिन्यू हमने की हुई है, और हमको भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। वो कहते हैं जी लोगों को पता शायद नहीं है कि मेरे दोनों एंकल्स जो है वो टूट गए हैं काम कर करके, और लोगों को जो है हमारा हार्डवर्क नजर नहीं आता है। रोहित था उसकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा जी ये जब आया था असिस्टेंट फिल्म मेकर बनने के लिए तो इसके पास खाना खाने के भी पैसे नहीं थे, तो ये कह देना कि कोई प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए इजी है, किसी के लिए इस इंडस्ट्री में इजी नहीं है। और जनाब आज गोविंदा साहब, जिसको कि बिल्कुल बॉलीवुड भूल चुकी है, 60 ईयर्स के हुए, लेकिन आज बहुत ही प्यारी तस्वीरें उनकी सोशल मीडिया पे नजर आई। उन्होंने अपनी बर्थडे मनाई अपनी फैमिली के साथ, बीवी और बच्चों के साथ। काले रंग का उन्होंने टी शर्ट और जैकेट पहना हुआ था और ब्लू ट्राउजर्स लगाया हुआ था, और उन्होंने जो है अपनी वाइफ सुनीता और बच्चे जो है टीना एंड यशवर्धन उनके साथ जो है वो देखे गए। ये पैदा हुए थे December 21st, 1963 को। इनका पूरा नाम है गोविंदा अरुण आहूजा, और इनको प्यार से चीची भी कहा जाता है, और इनके दोनों ही पेरेंट्स अरुण कुमार आहूजा और निर्मला देवी दोनों ही एक्टर्स थे। इनके वालिद साहब जो थे बहुत एक्टिव थे बॉलीवुड के अंदर 1940s और 50s के अंदर, और तकरीबन उन्होंने 20 फिल्मों में काम किया था। गोविंदा ने अपना बॉलीवुड का डेब्यू 1986 में बनाया था इल्जाम से, और उन्होंने फिर ओवर द ईयर्स 140 फिल्म्स में काम किया, लेकिन अब तो बेचारे को बिल्कुल ही साइडलाइन किया हुआ। इन जैसा कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में कॉमेडी कोई नहीं करता था, पर पता नहीं क्या वो अंदर की छप्पर की क्या स्टोरी है हमको मालूम नहीं है जी। अच्छा जनाब, पीसीबी जो है वो अब जो T20 सीरीज होने वाली है न्यूजीलैंड के अंदर, उसमें शायद ये जो ओपनिंग पेयर था जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का, इसको शायद चेंज कर सकते हैं। ये कहते हुए कि हम यंगस्टर्स को थोड़ा जो है वो आगे लाना चाहते हैं, इसलिए चांस दिया जा सकता है सायम अयूब को कि वो ओपन करेगा बाबर के साथ या रिजवान के साथ। तो अगर बाबर ने सायम के साथ ओपन किया तो फिर रिजवान 1 डाउन प्ले करेगा, अगर रिजवान ने ओपन किया सायम के साथ तो फिर बाबर नंबर 3 पे आएगा। इसके अलावा वो कहते हैं जी कि हम चाहते हैं कि फखर जमान नंबर 4 पे खेले, इफ्तखार नंबर 5 पे, आजम खान 6 पे, और रिजवान जो है वो हम चाहते हैं फील्डिंग करें, और आजम खान जो है हम चाहते हैं विकेट कीपिंग करें। तो ये कुछ
आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट
आजम खान, लेकिन वो इतना मोटा है वो भाग शाग नहीं सकेगा ना, तो ठीक है विकेट ही कर सकता है।
ये खड़े खड़े वो छक्के मारता है, दैट्स व्हाट यू नीड।
ओके, और जनाब वही हुआ जिसका था डर, बेचारा उस्मान खाजा, उसको पहले कहा जी कि तुम्हारे बूट जिसके के ऊपर लिखा हुआ है ह्यूमन राइट फ्रीडम्स, फ्रीडम इज ह्यूमन राइट्स एंड ऑल लाइव्स आर इक्वल, वो तुम जूता नहीं पहन सकते हो, तो वो फिर काली पट्टी लगा के आगे थे। आईसीसी ने आज उनको रेप्रमांड किया है, यानी कि उनको डांटा है, उन्होंने कहा यह तुम्हारा पहला ऑफेंस था जो कि आईसीसी के रूल्स के अगेंस्ट था, तो इसलिए हम तुमको डांट रहे हैं, उसके बाद हम तुम्हारे लिए
मारेंगे,
चांटे मारेंगे, एक्शन लेंगे, क्योंकि किसी किस्म का पॉलिटिकल मैसेज पायन, काली पट्टी बांधी है, उसमें पॉलिटिकल मैसेज क्या है, पॉलिटिकल मैसेज तो कोई आई नहीं। बहरहाल वो कहते हैं जी कि आप अपने जो ड्रेस के ऊपर किसी किस्म का और इक्विपमेंट के ऊपर किसी किस्म की कोई चीज अपनी तरफ से इनोवेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रीच ऑफ आईसीसी रूल्स है, और आईसीसी से ना तो आपने पहले अप्रूवल लिया था, ना आपने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से अप्रूवल लिया था ये काली पट्टी बांधने के लिए। इससे पहले भी इंग्लैंड के ऑलराउंडर मुइन अली जो है उनको आईसीसी ने 2014 में बैन कर दिया था, क्योंकि वो रिस्ट बैंड्स पहन कर आए थे जिसके ऊपर स्लोगन लिखे हुए थे सेव गाजा फ्री पैलेस्टाइन। आईसीसी कहता जी कि हम बिल्कुल इजाजत नहीं देते हैं किसी को भी इस तरह की बात करने के लिए, लेकिन आईसीसी ने अपने रूल्स बेंड किए थे जब उन्होंने प्लेयर्स को इजाजत दी थी दैट दे कुड टेक नी इन इंटरनेशनल मैचेस इन सपोर्ट ऑफ ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट, जब ये चली थी 2020 और 2021 में। और अब पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया का सेकंड टेस्ट जो है दिसंबर 26 से शुरू होगा, अब देखेंगे उस्मान खाजा जो है बेचारे उसमें क्या करते हैं, या तो इनको बिल्कुल ही बैन कर देंगे मुइन की तरह, या फिर अब देखेंगे क्या करेंगे। और जनाब बीबीसी की ये रिपोर्ट है, और इसके मुताबिक जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने डिक्लेयर किया है कि यूईएफए और फीफा जो हैं इन्होंने अब्यूज किया है अपनी जो डोमिनेंट पोजीशन है, जिसमें कि इन्होंने छोटे छोटे जो क्लब्स हैं उनको मना किया है कि ये बिल्कुल यूरोपियन सुपर लीग के अंदर एंटर नहीं हो सकते, और ये जो इन्होंने काम किया है ये बिल्कुल एब्सोल्यूटली अकॉर्डिंग टू लॉ इलीगल है। ये लॉ सूट जो है ये फाइल किया था ईएसएल ने, और उन्होंने कहा था जी कि ये जो इनका थ्रेट है इसके इन्होंने इसकी वजह से जो छोटे क्लब हैं वो फ्लरिश नहीं कर सकते, तो इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं, और इन्होंने हमें कहा था कि अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो तुम लोग जो है किसी भी लीग को फिर के भी मैचेस नहीं ज्वाइन कर सकोगे, तो ऐसे करके। तो ये आज यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि ये कॉम्पिटिशन लॉज को वायलेट करती है चीज, और लेकिन उन्होंने ये भी अभी तक नहीं कहा है कि जो ब्रेकअवे लीग्स हैं उनको भी हम अप्रूव कर रहे हैं, तो अब आने वाले दिनों में हौले हौले ये सारी चीजें जो है खुलेगी। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज वेरी वेरी हॉट ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। साक्षी मलिक जो हिंदुस्तान की बहुत ही एस किस्म की रेसलर हैं, जिनको के बड़ा मैन हैंडल किया गया, फिर वो जो है क्योंकि उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट के जो अलेज्ड एलिगेशंस लगाए थे ब्रिज भूषण सरन सिंह के ऊपर, जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे उस वक्त, और उनको पुलिस ने जो है वो भी बड़ा मैन हैंडल किया, फिर ये एक प्रोटेस्ट में बैठी, इन्होंने आज अनाउंस किया जी कि मैं रेसलिंग से बिल्कुल ही रिटायरमेंट ले रही हूं। उसकी वजह यह है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अब नए इलेक्शन आए हैं इसके अंदर जो ब्रिज भूषण के बहुत ही क्लोज फ्रेंड और इनके बिजनेस पार्टनर जो है उनको इलेक्ट किया गया है अब प्रेसिडेंट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए इनकी आंखों से आंसू आ गए, उन्होंने अपने जूते जो हैं टेबल के ऊपर रखे हुए थे एज अ प्रोटेस्ट, और उन्होंने कहा जी कि हम एक फीमेल प्रेसिडेंट चाहते थे लेकिन चूंकि ये नहीं हुआ, और ऐसे लोग जो कि ब्रिज भूषण के करीब हैं अगर वो आएंगे तो वो भी वैसे होंगे इन एन एज अ रिजल्ट जो है मैं छोड़ रही हूं। साक्षी मलिक जो है उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लिया था रेसलिंग के अंदर। शी वॉज बॉर्न ऑन सेप्टेंबर 3rd 1992, और इनको बहुत ज्यादा रिकग्निशन मिली थी जब इन्होंने 2016 में ब्रॉन्ज मेडल रेसलिंग में लिया था रियो ओलंपिक्स के ऊपर, और फिर इन्होंने डिफीट किया था एशियन चैंपियन असियुलू तेनबिकोवा को किर्गिस्तान में 8-5 से, और 12 साल की थी जब इन्होंने रेसलिंग शुरू की थी, और फिर होते होते इन्होंने बहुत सारे जो हैं चीजें बहुत सारे टाइटल्स विन किए। 2010 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और कहा जाता था कि ये बहुत ज्यादा जो हैं वो पोटेंशियल है इनके अंदर, तो आने वाले दिनों में भी ओलंपिक्स में बहुत सारे मेडल्स जीतेंगी, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैं अपना खून पसीना मैं देती हूं, मैं बहुत ज्यादा हार्डवर्क करती हूं इस गेम के लिए, लेकिन अगर उसको सराहा नहीं जाएगा तो फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती। ठीक है पान,
हो गया जी
बस
बहुत शॉर्ट न्यूज है,
बिकॉज इट इज 5:30 ऑलरेडी।
आपकी न्यूज बड़ी शॉर्ट हो गई है।
अच्छा जी,
हाँ जी, नहीं कैसा करें इसको
घंटे के लिए घंटे के लिए हम करते हैं गर्मियों में.
थैंक यू
मजीद भाई, आई सी यू इंशाल्लाह टुमारो.
अप्रिशिएट इट, रियली अप्रिशिएट इट. बकिया की न्यूज इंशाल्लाह ताला कल जुमा है और जुमे को हम आपके साथ आएंगे और अब से लेके कल दोपहर तक जितनी भी ताजा तरीन न्यूज होगी वो हम आपके लिए पेश करेंगे. अब मैं ली चलता हूँ आपको प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विथ जीशान अहमद. रंगारंग प्रोग्राम इसी तरह सुनते रहिए एंड कल की मुलाकात तक अल्लाह हाफिज.
एक मेरा यारा एक ओदी यारी यही अरदास है मेरी. वही मेरा सच है वही मेरी जिद भी दिल विच सांस है मेरी. रूठे न मनाना ओदा नहीं मैं कदी भी ना रूठना बस सीखे यारी निभाना जब से जुड़ी है जान तुझसे. आ यारा मेरे कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा कर मंगदा मैं तेरी कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा कर मंगदा मैं तेरी. यार बिन जीना सिखा दे ओ रब्बा मेरे मर मंगदा मैं तेरी कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा कर मंगदा मैं तेरी. हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा तेरे वरगा यार कहीं ना मुझको और मिलेगा. भूल से भी कोई भूल हुई हो तो यार वे उसे भुला के तू एक बारी गले लग जाने देना. एक बारी गले लग जाने दे यारा मुझे मर मंगदा मैं तेरी कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से कर मंगदा मैं तेरी कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से कर
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाइना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। रेडियो 770 AM वॉइस ऑफ कम्युनिटी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com।
रज के रुलाया, रज के हसाया, मैंने दिल खो के इश्क कमाया। मांगा जो उसने एक सितारा, बिछड़ेंगे ना हम कभी, वो जो बहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते, सोचता हूँ चांद रोशन थे तब आसमां में कई, एक मैं एक वो और शाम में कई, चांद रोशन थे तब आसमां में कई, यारियों का वो दरिया उतर भी गया और हाथों में बस रेत ही रह गई, कोई पूछे के है, कोई पूछे के हमसे जाते थे जो सांस बनके कभी, आते जाते थे जो सांस बनके कभी, वो हवा हो गए देखते देखते, वो हवा हो गए है, ओ हो हो, ओ हो हो, वो हवा
तेरे लिया यारा ना पावे कदे दूर।
बखरा दिखा के दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैके अक नाल अक नू मिला के दिल दिया गल्ला राता कालिया 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 ने मेरे दिल सांवले जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा रात देता है हर कोई साथ तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ
तारा तेरे संग यारा